6-7 सितंबर दिन सोमवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूँ सुशीला सिंह। चीन ने तिब्बत पर अपनी नीति का किया बचाव, भारत प्रशासित कश्मीर में व्यवसायिक संगठनों ने किया बंद का आह्वान। वाटरमैन कहलाए जाने वाले राजेंद्र सिंह ने दिल्ली से शुरू की विश्व शांति जल यात्रा, क्या है मकसद?
जिस तरह से लोगों का अधिकार पानी पर कायम करने की बात होती है, उसी तरह से नदी का अधिकार और प्रकृति का जल अधिकार भी कायम करने की बातें सरकारें करने लगे, सरकारों को समझ में आने लगे।
वैशाली कटिहार के बाद अररिया में हुई जन संसद।
राज्य में रहने का बराबर का भागीदारी हमें चाहिए। जो हमारे बच्चे का शिक्षा स्कूल में सही ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, रोजगार मनरेगा में नहीं मिल रहे हैं।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। चीन ने तिब्बत पर अपनी नीति की पैरवी करते हुए कहा है कि तिब्बत में हालात बहुत खुशनुमा हैं और यहाँ के लोगों के पास विकास की अनेक संभावनाएं मौजूद हैं। वहीं निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष ने चीन के इन दावों की तीखी आलोचना की है कि अगर तिब्बत में हालात इतने ही अच्छे हैं तो वहाँ मानवाधिकार संगठनों को जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती। तुर्की में कुर्द चरमपंथी हमले में कई सैनिक मारे गए हैं। इस हमले के बाद तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावुतोग्लू ने आपात बैठक बुलाई है। तुर्की के मीडिया के मुताबिक हकारी प्रांत में बारूदी सुरंग ने सेना के 2 वाहनों को उड़ा दिया। चरमपंथी गुट PKK ने वक्तव्य जारी कर 15 सैनिकों के मारे जाने की बात कही है, लेकिन सरकार ने किसी आंकड़े की पुष्टि नहीं की है। ब्राजील के पेरेटी शहर के पास एक बस दुर्घटना में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। पेरेटी ब्राजील का एक मशहूर पर्यटन स्थल है। इस हादसे में 30 और लोग घायल हो गए जब ये बस गॉड हेल्प मी हिल नाम की एक खतरनाक सड़क पर पलट गई। रियो डे जनेरो की पुलिस इस हादसे की वजहों की जांच कर रही है। मैक्सिको में करीब 1 साल पहले 43 छात्रों के गायब हो जाने की घटना की स्वतंत्र जांच ने इस घटना के सरकारी ब्यौरे को खारिज कर दिया है। वॉशिंगटन की संस्था इंटर अमेरिकन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ने सुझाव दिया है कि अधिकारियों को इन छात्रों की तलाश जारी रखनी चाहिए। एक संवाददाता सम्मेलन में जांचकर्ताओं में से एक फ्रांसिस्को कॉक्स ने सरकार के इस निष्कर्ष को खारिज कर दिया कि छात्रों के शवों को एक कचरे के मैदान में जला दिया गया था।
सात
मीटर ऊंची आग की लपटों से मैदान में मौजूद सारा प्लास्टिक भी जल जाता। कचरा इकट्ठा करने की ये जगह शुष्क है, इसलिए इतनी बड़ी आग से दावानल भड़क सकता था जिससे ये पूरा इलाका जल जाता। इन सभी वजहों से विशेषज्ञों का मानना है कि इन छात्रों को कोकुला के कचरा मैदान में नहीं जलाया गया। ये थे फ्रांसिस्को कॉक्स के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ग्वाटेमाला में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद राष्ट्रपति ओटो पेरेज मोलिना ने इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति पद के प्रमुख उम्मीदवारों में से एक हास्य अभिनेता जिमी मोरालेस भी हैं, जिनका नारा है ना भ्रष्ट हूं ना ही चोर। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी मैनुअल बॉल्डिजॉन नाम के व्यापारी हैं। अगर इस चुनाव में कोई भी 50% से ज्यादा वोट नहीं हासिल करता तो अगले महीने चुनाव का एक और दौर आयोजित किया जाएगा। इसराइली पुलिस का कहना है कि जेरूसलम में समलैंगिकों के एक जुलूस में लोगों को चाकू मारने की वारदात को ना रोक पाने के लिए 11 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। जुलाई में हुई इस घटना में एक किशोर लड़की मारी गई थी जब यशाई श्लिसेल नाम के शख्स ने उस लड़की और अन्य लोगों पर चाकू से हमला किया था। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो BBCHindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम में सबसे पहले बात चीन की, और जैसा कि आपने समाचारों में प्रगति सक्सेना से सुना, चीन ने तिब्बत पर अपनी नीति का बचाव करते हुए कहा है कि तिब्बत सुनहरे दौर से गुजर रहा है। चीन ने एक नीतिगत दस्तावेज जारी किया है जिसमें कहा गया है कि तिब्बत के लोग अपनी किस्मत के मालिक हैं। उधर निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि अगर तिब्बत सुनहरे दौर से गुजर रहा है तो वो वहाँ बाहरी राजनयिकों और मानवाधिकार संगठनों को जाने की इजाजत क्यों नहीं है और लोग आत्मदाह क्यों कर रहे हैं। पूरा ब्यौरा सुना रहे हैं अशोक कुमार।
ऐसे नारों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है सिवाय तिब्बत के। तिब्बत के बाहर रहने वाले तिब्बती लोग लगातार आजादी की मांग बुलंद करते हैं। वहीं चीन का दावा है कि उसके राज्य में तिब्बत तेजी के साथ तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। चीन की तरफ से हाल ही में जारी एक नीतिगत दस्तावेज के मुताबिक तिब्बत के लोग अपनी किस्मत के मालिक हैं, वहां की संस्कृति को संरक्षित किया जा रहा है, लोगों का जीवन स्तर तेजी से बेहतर हो रहा है। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के उपाध्यक्ष दोजे सेहग ने बीजिंग में कहा, सड़कें, रेलवे और विमानन समेत व्यापक परिवहन व्यवस्था तैयार की जा रही है। हाइड्रो पावर को केंद्र में रखते हुए ऊर्जा तंत्र भी विकसित किया जा रहा है। जियोथर्मल, पवन और सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल हो रहा है। तिब्बत सूचना के युग में दाखिल हो चुका है। वहां आधुनिक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित है। ऑप्टिकल केबल, सैटेलाइट और इंटरनेट इसकी रीढ़ बन चुकी हैं। ये थे दोजे चेहक के शब्द। उन्होंने कहा कि तिब्बत में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का भी विकास हुआ है। हालांकि निर्वासित तिब्बती सांसद के अध्यक्ष पेनपा थेरिंग ने चीन के इन दावों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि तिब्बत में 142 तिब्बती आत्मदाह कर चुके हैं। अगर वो अपनी किस्मत के मालिक होते तो ऐसी स्थिति ही क्यों आती। पेनपा थेरिंग ने बीबीसी से बातचीत में कहा,
अगर तिब्बत गोल्डन पीरियड में गुजर रहा है तो फिर बाहर के लोग तिब्बत को देख क्यों नहीं आने देता है। जो तिब्बत में स्थिति है उनको बाहर के लोग, जर्नलिस्ट, डिप्लोमेट्स, ह्यूमन राइट्स का जो लोग हैं और बाहर के जो पार्लियामेंटेरियंस है, गवर्नमेंट्स है, इनको क्यों नहीं आने देता है। सिर्फ शब्दों से गोल्डन पीरियड नहीं बनता ना। 142 तिब्बतियों ने आत्मदाह किया है तो वहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है हमारे हिसाब से।
दुनिया की छत के तौर पर मशहूर तिब्बत चीन के प्रशासन वाला अब एक स्वायत्त क्षेत्र है। चीन तिब्बत की सदियों पुरानी संप्रभुता को बरकरार रखने का दावा करता है, लेकिन तिब्बत के कई लोगों की आस्था निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामा से जुड़ी है, जिन्हें चीन विभाजनकारी ताकत के तौर पर देखता है। साल 1959 में 14वें दलाई लामा तिब्बत से अपने समर्थकों के साथ भारत आ गए थे। अब उनके समर्थक यहाँ निर्वासित संसद और सरकार चलाते हैं। हालांकि दलाई लामा चीन से तिब्बत की आजादी की मांग नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ स्वायत्तता की मांग करते हैं, लेकिन चीन की नजर में वो अलगाववादी गतिविधियों को भड़काने वाले नेता ही हैं। चीन ने 2008 में जब ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था, तब लंदन, पेरिस और सैन फ्रांसिस्को समेत कई शहरों में ओलंपिक मशाल के दौरे के वक्त निर्वासित तिब्बतियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। चीन तिब्बत में होने वाले आत्मदाहों के लिए भी दलाई लामा को ही जिम्मेदार मानता है, लेकिन निर्वासित संसद के अध्यक्ष पेनपा थेरिंग कहते हैं,
वहाँ का पॉलिटिकल राइट नहीं है और मोनेस्ट्री में जो पढ़ाई करना है वो ठीक से पढ़ाई करने नहीं देता है, फिर तिब्बत की एनवायरनमेंट को नष्ट किया जा रहा है।
उधर पेनपा थेरिंग का दावा है कि तिब्बत के पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है। वो सवाल करते हैं कि अगर चीन की बातों में वाकई दम है तो फिर तिब्बत की कम्युनिस्ट पार्टी का सचिव कोई तिब्बती क्यों नहीं है। निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष कहते हैं कि सिर्फ कहने भर से सुनहरा दौर नहीं आ जाता, तिब्बत में विकास के दावे करते चीन को इन सवालों के जवाब भी तलाशने होंगे।
ये थे अशोक कुमार। और अब रुख भारत का। भारत प्रशासित कश्मीर में एक साल पहले आई बाढ़ के बाद पीड़ितों के पुनर्वास में हुई नाकामी के विरोध में घाटी के व्यावसायिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। इस बंद का नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलगाववादी संगठन हुरियत कॉन्फ्रेंस ने भी समर्थन किया है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने बात की श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से।
असल में तो ये बंद जो है, जो यहाँ व्यापारी संगठन है उन्होंने बुलाया है, जिसमें कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है और भी कई गुट है, उन्होंने एक साथ मिलकर ये बंद सरकार के विरोध में बुलाया है और इसका समर्थन जो अलगाववादी गुट है उन्होंने भी किया है। और इन सब का मुद्दा ये है ये बंद बुलाने का, क्योंकि 7 सितंबर जो है आज ही के दिन पिछले वर्ष बाढ़ आई थी जिससे पूरा कश्मीर प्रभावित हुआ था और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 15 लाख लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें से 281 लोग मारे भी गए। और इसमें जो उस वक्त की सरकार थी, उमर अब्दुल्ला की सरकार मुख्यमंत्री थे वो, तो उन्होंने एक अंदाजा लगाया था कि 44,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरे जो घर ढह गए हैं। तो उसके बाद जो है बराबर ये मुतालबा पूरे साल चलता रहा, पूरे वर्ष चलता रहा और व्यापारियों का कहना है कि एक मजाक किया गया उनके साथ, केंद्र सरकार ने भी किया और राज्य सरकार ने भी किया, क्योंकि सिर्फ 570 करोड़ का मुआवजा दिया गया और 2437 करोड़ रुपए की एक और किस्त दी गई, लेकिन उसमें से जो बड़ी रकम है वो इंडियन एयरफोर्स और एनडीआरएफ को बचाव कार्रवाइयों के लिए फीस के तौर पे दी गई। तो ये बंद इसलिए है क्योंकि इन व्यापारियों का और अलगाववादियों का कहना है कि कश्मीर राज्य में जो बाढ़ से स्थिति हुई थी उसके बाद लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया गया।
जी रियाज, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की और बाढ़ पीड़ितों की क्या स्थिति है?
हाँ जी, देखिए बाढ़ पीड़ितों के लिए किस्तों में उनको जो है नकद मुआवजा देने का जो सिलसिला सरकार ने शुरू किया था वो अभी भी पूरी तरह से मुआवजा सभी लोगों को नहीं मिला है। हालांकि बहुत सारे क्षेत्रों में लोगों को दिया गया और पहली किस्त जो है वो 3,800 रुपए उन लोगों को दी गई थी जिनके मकानों में थोड़ा सा नुकसान था और जिनको मकान ढह गए थे उनको 25,000 और 75,000 रुपए की किस्तें दी गई, मतलब उनके लिए वो अप्रूव की गई थी। लेकिन लोगों का कहना है और कई गुटों का कहना है जिनमें व्यापारी गुट खास तौर से है, उनका कहना है कि उनको ये पूरी तरह से नहीं मिला है। अब जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है तो इंश्योरेंस कंपनियों ने बहुत बड़ा रोल निभाया है क्योंकि उन्होंने क्लेम्स को कोर्ट के आदेश पर पूरी तौर उसी दौर में किया था। सितंबर में सैलाब आया था और अक्टूबर और नवंबर तक सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने सारे क्लेम्स को सेटल किया था। उसकी वजह से दुकानदारों ने और घरों के जिनके इंश्योरेंस थे उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। तो आज तो अब श्रीनगर जो पिछले साल का श्रीनगर था वो तबाही का मंजर पेश कर रहा था, तो आज तो श्रीनगर बिल्कुल रिबिल्ड ऑलमोस्ट हो गया है, अपने पांव पे खड़ा है और मार्केट में जो वो पुरानी शान है हालांकि वो बहाल तो नहीं हो पाई है लेकिन आम जनजीवन जो है वो सामान्य हो गया।
व्यावसायिक संगठनों ने किया कश्मीर में बंद का आह्वान। ये थे श्रीनगर से रियाज मसरूर। हाल ही में प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज हासिल करने वाले राजेंद्र सिंह अब एक नए मिशन पर हैं। उन्होंने कल दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट से विश्व जानती शांति जल यात्रा शुरू की है। ये यात्रा आज मुंबई पहुंचेगी जहां यात्रा में शामिल लोग भाभा साइंस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने वाटरमैन के नाम से मशहूर और पर्यावरण को लेकर काम करने वाले राजेंद्र सिंह से बात की और पूछा कि उनकी शांति यात्रा का मकसद क्या है।
विश्व शांति जल यात्रा का उद्देश्य है जहां देश दुनिया में पानी के लिए समाज राज मिलकर कुछ अच्छे काम कर रहा है और वाकई ही सब लोगों को पीने का जीने का पानी स्वच्छ पानी मिले और सब लोगों का पानी पर समान अधिकार कायम रहे और जिस तरह से लोगों का अधिकार पानी पर कायम करने की बात होती है उसी तरह से नदी का अधिकार और प्रकृति का जल अधिकार भी कायम करने की बातें सरकारें करने लगे, सरकारों को समझ में आने लगे कि नदी का जल अधिकार और प्रकृति का जल अधिकार कायम किए बिना नदियां स्वस्थ नहीं रह सकती और नदियां स्वस्थ नहीं होगी तो समाज स्वस्थ नहीं रह सकता। इस विचार को राज समाज और वैज्ञानिक और ये सब ये समझाने के लिए एक जल साक्षरता अभियान पूरी दुनिया में शुरू करने का तय किया है। ये यात्रा महात्मा गांधी की समाधि से शुरू हुई, अभी ये कुंभ जाएगी नासिक में और उसके बाद सबसे पहले कैलिफोर्निया जाएगी क्योंकि कैलिफोर्निया में एक बड़ी सक्सेस हुई कि उन्होंने सैन फ्रांसिस्को शहर में बोतलबंद पानी बंद कर दिया। इसका मतलब पानी पर सबका समान अधिकार है। जर्मनी जाएंगे, हंगरी जाएंगे, बोलेविया जाएंगे, टर्की जाएंगे, उन सब देशों में जाएंगे। वैसे उद्देश्य यह है कि दुनिया के सारे देशों में अगले 5 सालों में ये यात्रा जाए।
भारत सरकार ने भी पानी के क्षेत्र में काफी काम शुरू किया है, खास तौर पर जो बड़ी दो नदियां हैं गंगा और यमुना, इसके लिए अलग से परियोजना बनाई गई है। पहली बार गंगा के लिए एक मंत्रालय बनाया है। इस पूरे कामकाज को आप किस तरह से देखते?
अभी नई सरकार आई है, 1.5 साल हुआ है, इसको थोड़ा नया मंत्रालय बनने में थोड़ा समय लगा, थोड़ा बदलाव होने में समय लगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक अच्छा काम किया कि पुनर्जीवन मंत्रालय बनाया, इसमें से कुछ आशा जगती है। लेकिन अभी तक ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि गंगा और यमुना की सफाई के लिए ये किस तरह से नया कर रहे हैं, जो कुछ जिससे हम ये कह सकें कि इस बार इस काम में भ्रष्टाचार नहीं होगा, इस काम में ईमानदारी से काम होगा, ये जो सुनिश्चित होने की बात है वो इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। अगले 4 साल में 5 साल में गंगा और यमुना साफ हो जाएंगी, ऐसा कोई परिदृश्य सुनिश्चित नहीं है।
आपको अभी स्टॉकहोम अवार्ड मिला है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपको पुरस्कार मिला है क्या ये भारत को पानी के दिशा में काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है? अगर करेगा तो किस तरह से?
ये पुरस्कार जो उसके साइटेशन में लिखा है वो ये कि जो लोगों की जरूरत थी, लोगों ने अपने संगठित भाव से उस जरूरत को पूरी करने का विश्वास पैदा किया और उस विश्वास के कारण लोग इस काम में जुट गए और लोगों की जो जरूरत थी उन्होंने अपने पानी की जरूरत को अपने इलाके में पूरा कर लिया और नदियों को भी पुनर्जीवित किया। मैं समझता हूँ कि जो ये जो एक अथॉरिटी मिली है, इस अथॉरिटी से हम अपने देश में सब जगह पर और पूरी दुनिया में अब पानी के जो संकट के समाधान है, समाधानों पर बोल सकते हैं।
वाटरमैन राजेंद्र सिंह विश्व शांति जल यात्रा पर राजेंद्र सिंह से बात कर रहे थे वात्सल्य राय। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जागरण शक्ति संगठन और जन आंदोलन के राष्ट्रीय समन्वयक ने आम जनता से जुड़े मुख्य मुद्दों को लेकर बहस शुरू कर दी है। यहां जन संसद के माध्यम से बिहार के चुनाव के मुद्दों पर राय ली जा रही है। वैशाली और कटिहार के बाद कल अररिया में जन संसद का आयोजन हुआ। एक रिपोर्ट के साथ नीरज सहाय।
बिहार विधानसभा के चुनाव में आम जनता से जुड़े मुख्य मुद्दे क्या हों, इस पर जन जागरण शक्ति संगठन और जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय ने प्रदेश में गंभीर बहस छेड़ दी है। पहले वैशाली, फिर कटिहार और रविवार को अररिया में हुए बिहार जन संसद के माध्यम से बिहार के चुनाव में जनता के मुद्दे क्या होंगे यह जनता तय करेगी ने खूब तेजी पकड़ी। इस मुद्दे के पक्ष में सुदूर अररिया जिला में फटे रबड़ के चप्पल, धूल और मिट्टी में सनी गंदी साड़ियों और पसीने से बदन में चिपके बनियान पहने बेहद आम लोगों ने पहले शहर भर में रैली निकाली। रैली के दौरान विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता गाने गाकर जन प्रतिनिधियों पर जमकर निशाना साध रहे थे। शहर का भ्रमण करने के बाद यह जुलूस एक सभा में तब्दील हो गया। आम लोगों से जुड़ी सामान्य मुद्दों पर गंभीर और लंबी बहस भी हुई। हिस्सेदारी सबों की थी। वहां मौजूद लोगों ने जुलूस में हिस्सा लेने और आगामी चुनाव में राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बनाने के बारे में विस्तार से बताया।
मेरी नाम नीला देवी है। हम इस संसद जो लगा है अररिया में पहली बार लगा है और हमारा मांग है शिक्षा, जो हमारे बच्चे को नहीं मिलता है, अस्पताल का दवाई वो हमारा पूरा नहीं होता है और रोटी, कपड़ा, मकान।
हमारे राज्य में रहने का बराबर का भागदारी हमें चाहिए। जो हमारे बच्चे का शिक्षा स्कूल में सही ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, आंगनबाड़ी में उचित अनुकूल हमें सब कुछ नहीं मिल रहे हैं, जैसे रोजगार चाहिए हमें, रोजगार मनरेगा में नहीं मिल रहे हैं, जो रोजगार भी 10 दिन मिलते हैं तो पेमेंट के लिए साल भर हमें परेशान होना पड़ता है, ब्लॉक जाके चक्कर लगाते हैं लेकिन हमारा पेमेंट नहीं मिलता है, बहुत कष्ट देता है हम लोगों को। कि इस बार ये जन संसद में हम लोग पूरा तय करेंगे, वो तय करके हमारा जो भागदारी है, जो हिस्सा है इस देश में रहने का, वे हमें मिलना चाहिए बराबरी का दर्जा जीने का।
विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस विधानसभा चुनाव में अगला 7 बार हम लोग ठगते आए हैं, इस बार हम लोग पूरा विधानसभा से पूरा जिला से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये जनता का घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। जो मूल समस्या है अभी का जो नेता लोग है वो छोड़ के चल रहा है और जनता की तरफ से घोषणा पत्र तैयार करके हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव में पर्चा के माध्यम से हर विधायक, जितना भी विधायक खड़ा होगा हम उनको पर्चा देंगे और बोलेंगे कि हमारा मुख्य मांग ये है, आपको पूरा करना होगा। यदि वो पूरा करता है तो ठीक है, नहीं करता आने वाला 5 साल के बाद जो कोई भी विधायक जीतेगा हम उनका घर पर जाके दबाव बना सकते हैं।
लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बेहद ही साधारण समझे जाने वाले मुद्दों के समर्थन में अररिया जैसे छोटे शहर में लगभग 2000 लोगों का समर्थन मिल जाना बड़ी बात है। साथ ही आम जनता के प्रति नेता और दलों की संवेदनहीनता की ओर इशारा भी यह बिहार जन संसद कर जाता है। अब देखना यह है कि अलग अलग राजनीतिक दल और इनसे जुड़े नेता इन मुद्दों को अपनी अपनी पार्टियों के घोषणा पत्रों में शामिल कर अपनी जवाबदेही निभाते हैं या फिर चुनाव में ये लोग और इनकी ज़रूरतें महज एक चुनावी वादा ही होकर रह जाती हैं। नीरज सहाय, BBC, अररिया।
और अब वसुतुल्ला खान की डायरी।
पहले मेरा इरादा था कि जब हर तरफ 65 का युद्ध छिड़ा हुआ है तो मैं भी कलम की तलवार पकड़ के कूद जाऊं और दुश्मनों के कुश्तों के पुश्ते लगा दूं। फिर सोचा कि अभी तो 22 सितंबर तक हंगामा चलेगा, जब लोग बाग किसकी हार किसकी जीत के तराने गाते गाते थक के गिर पड़े तब इस विषय पे लिख के मन ठंडा करूंगा। फिर मन में आई कि नई दिल्ली के औरंगजेब मार्ग को अब्दुल कलाम मार्ग से बदलने के मामले को लेके नेताओं, बुद्धिजीवियों और इतिहासकारों में जो छींछा लेदर हो रही है उसमें थोड़ा बहुत ऐतिहासिक गंध मेरी ओर से भी उछल जाए तो क्या बुराई है। मगर फिर ये सोच के हाथ रोक लिया कि बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अगर किसी ने ये पूछ लिया कि मियाँ, औरंगजेब मार्ग को तो छोड़ो, ये बताओ कि कराची के गांधी गार्डन को बदल के कराची जूलॉजिकल गार्डन, राम बाग को आराम बाग, बलूचिस्तान के शहर हिंदू बाग को मुस्लिम बाग से बदलने की क्या ज़रूरत थी, और जब लाहौर में गंगा राम हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, कनेट गर्ल्स कॉलेज और एचिसन कॉलेज का नाम आज तक किसी को बुरा नहीं लगा तो फिर लॉरेंस गार्डन को बागे जिना, कृष्ण नगर को इस्लामपुरा और संत नगर को सुन्नत नगर करके मुसलमान बनाने की क्या ज़रूरत थी। जब टोबा टेक्सिंग में कोई ख़राबी नहीं तो लायलपुर फैसलाबाद क्यों हो गया। नाम बदलना और बात है और नए नाम का चलना और बात। कराची में एक रक्षे वाले से मैंने पूछा कि भाई सर शाह मोहम्मद सुलेमान रोड चलने के कितने पैसे लोगे। उसने पूछा ये गजभर नाम वाला रोड है कहाँ साहब। जब मैंने उसे नक्शा समझाया तो घूरते हुए कहने लगा साहब सीधा सीधा उर्दू में कहो ना कि विक्टोरिया रोड जाना है, हमें क्या बता के सर शाह मोहम्मद सुलेमान रोड का क्या मतलब है। पर जैकबाबाद वालों ने तो कमाल ही कर दिया। ज़ियाउल्लक के ज़माने में उसका नाम याकूबाबाद बदलने की योजना चली मगर जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने हज़ारों दस्तखत करवा के एक ज्ञापन इस्लामाबाद भिजवा दिया कि हम अपने शहर का नाम नहीं बदलने देंगे, ये शहर जिसने बसाया उसी के नाम पे रहेगा। अगर जॉन जैकब अंग्रेज था तो इसमें हमारा क्या दोष। बहुत साल पहले जब मैं जैकबाबाद गया तो देखा कि जॉन जैकब की खबर पे लिखा था आस्ताना मुबारक हजरत जॉन जैकब साहब, और उनकी कब्र पे जो बेरी लगी हुई थी उसकी शाखों से कई रंगीन पट्टियां बंधी थीं। मैंने कब्र की देखरेख करने वाले से पूछा ये पट्टियां कौन बांध जाता है। कहने लगा जिनके यहाँ औलाद नहीं होती वो मुर्शद जैकब साहब की कब्र पे आके मन्नत मानते हैं कि अगर मुराद पूरी हो गई तो बेरी से पट्टी बांधूंगा और कब्र पे 40 दिए भी जलाऊंगा। तो जिनके यहाँ लड़की होती है वो लाल पट्टी बांध जाते हैं और जिनके यहाँ लड़का तो वो हरी पट्टी बांध देते हैं। मैंने बेरी को नज़र भर के देखा, सिर्फ 7 लाल पट्टियाँ लटक रही थीं, बाकी सब हरी थीं। 65 के युद्ध के बाद रेडियो पाकिस्तान से फिराक गोरखपुरी की गज़लें बजनी बंद हो गईं। पता चला कि अब किसी भी हिंदुस्तानी शायर का कलाम नहीं बजेगा। किसी ने रेडियो पाकिस्तान कराची की दीवार से इश्तिहार चिपका दिया, फिराक गोरखपुरी को नहीं बजाते तो गालिब और इकबाल पे भी पाबंदी लगा दो, वो भी हिंदुस्तानी थे। कुछ साल बाद रेडियो पाकिस्तान ने फिराक साहब को फिर से पाकिस्तानी मान लिया।
आपको वसुतुल्ला खान की ये डायरी कैसी लगी हमें ज़रूर लिखिएगा। और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का। प्रगति सक्सेना समाचार पत्रों के साथ स्टूडियो में है। प्रगति
जी, सुशीला जी, जो सारे अखबारों में खबरें हैं 4-5 खास, वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। एक तो मेट्रो अब फरीदाबाद, दिल्ली फरीदाबाद सेवा इसकी शुरू हो गई है, प्रधानमंत्री मोदी ने कल इसका उद्घाटन किया। वन रैंक वन पेंशन का फ़ायदा सबको मिलेगा, मोदी जी ने ये आश्वासन दिया है। इस आश्वासन के बाद पूर्व सैनिकों का अनशन तो खत्म हो गया लेकिन आंदोलन जारी है। पुलिस इंद्राणी मुखर्जी के घर गई शीना बोरा हत्याकांड के सिलसिले में, और सुराग तलाशने के लिए उन्होंने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। EPFO में बीमा कवर 5.5 लाख रुपए करने की तैयारी में है सरकार। उधर BSF और पाक रेंजर्स की DG स्तरीय बैठक 9 सितंबर से दिल्ली में होगी और यह बैठक 5 दिन चलेगी। पत्रकार अमृता राय ने दिग्विजय सिंह के साथ शादी की बात को फेसबुक पे बताया है और बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा संसदीय बोर्ड ही करेगा मुख्यमंत्री की दावेदारी का फैसला। इसके अलावा नई दुनिया में एक हृदय स्पर्शी खबर है जापानी युवती की, जिसका जयपुर में फरवरी में बलात्कार हुआ था। ये युवती ताजमहल पर अपना जन्मदिन मनाना चाहती थी, तो पुलिस इन्हें ताजमहल लेके गई और उन्होंने वहाँ ताजमहल देखा। ये इनकी हिम्मत भी जतलाता है। नवभारत टाइम्स में खबर है कि वैष्णो देवी में हेलीकॉप्टर का किराया बढ़ा दिया गया है। सरकार ने 12.5% सर्विस टैक्स लगाकर ये किराया बढ़ा दिया है। दैनिक भास्कर में केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में खबर है कि एक 3 सदस्यीय कमेटी ने एक रिसर्च के बाद ये बताया है कि भ्रष्टाचार के बड़े मामलों को निपटाने में 8 साल तक लग जाते हैं। स्मार्ट सिटी में रहने पर हर साल बढ़ जाएगा पानी बिजली का बिल, ये भी दैनिक भास्कर में खबर है। जनसत्ता में गंगा के सफाई पर खबर है कि काली नदी को साफ किए बिना उजली नहीं होगी गंगा, और आयकर चोरी करने वालों को अगर आप पकड़वाएंगे तो आप इनाम पाएंगे, ये आयकर विभाग ने घोषणा की है। और उधर अन्ना हजारे पर आधारित फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। अमर उजाला में एक खबर है कि नौकरी का झांसा देकर ले गए और 27 ने किया गैंगरेप, ये नई दिल्ली का मामला है। CBSE की तरह गुरुकुल का भी होगा बोर्ड, ये शिक्षा के क्षेत्र में अहम बदलाव की जो रूपरेखा तैयार हो रही है उसके बारे में है।
समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति, और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट अमरीकी ओपन में स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर, ब्रिटेन के एंडी मरे और अमेरिका के जॉन इस्नर की जीत का सिलसिला जारी है, लेकिन 16वीं वरीयता हासिल इटली की सारा ईरानी महिला एकल वर्ग के तीसरे दौर में ऑस्ट्रेलिया की सामांथा स्टूसुर से 7-5, 2-6, 6-1 से हार गई। वहीं 11वीं वरीयता हासिल जर्मनी की एंजेलिक कर्बर, 20वीं वरीयता हासिल बेलारूस की विक्टोरिया अजरेंका से 7-5, 2-6, 6-4 से मात खा गई। महिला एकल वर्ग में दूसरी वरीयता हासिल रोमानिया की सिमोना हालेप, जर्मनी की सबीने लिसी की, 5वीं वरीयता हासिल चेक गणराज्य की पेत्रा क्विटोवा तीसरे दौर की बाधा पार कर चौथे दौर में पहुंच चुकी हैं। उधर इंग्लैंड के खिलाफ पिछले दिनों एशेज टेस्ट सीरीज के बाद पहले तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा। अब लगातार चोट का सामना करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर शेन वाटसन ने भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। शेन वाटसन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में 59 टेस्ट मैच खेले, 4 शतक और 24 अर्धशतक की मदद से 3,731 रन बनाए। उनका उच्चतम स्कोर 176 रन रहा। इसके अलावा उन्होंने 75 विकेट भी टेस्ट क्रिकेट में अपने नाम किए। उधर अमेरिका के लास वेगास शहर में आज से विश्व कुश्ती चैंपियनशिप शुरू होने जा रही है। इस चैंपियनशिप में लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त की अगुवाई में भारतीय दल भी फ्री स्टाइल शैली में अपनी चुनौती पेश करेगा। इसके अलावा साल 2012 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश की मौजूदगी से जोश से भरी भारतीय महिला पहलवान भी अपना दावा पेश करेंगी। इनके अलावा ग्रीको रोमन में भी भारत के 8 पहलवान विभिन्न भार वर्ग में हिस्सा लेंगे। आज विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के ग्रीको रोमन के शुरुआती मुकाबले होंगे, जहां 66 किलो भार वर्ग में भारत के दीपक, 75 किलो भार वर्ग में गुरप्रीत सिंह और 98 किलो भार वर्ग में हरदीप अपनी चुनौती पेश करेंगे। उल्लेखनीय है कि विश्व चैंपियनशिप अगले साल रियो में होने वाले ओलंपिक्स के लिए पहली क्वालिफाइंग चैंपियनशिप भी है।
तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे खेल समाचार आदेश कुमार गुप्त से, और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। चीन ने तिब्बत पर अपनी नीति की पैरवी करते हुए कहा है कि तिब्बत में हालात बहुत खुशनुमा हैं। वहीं तिब्बती संसद के अध्यक्ष ने चीन के इन दावों की तीखी आलोचना की है। तुर्की में कुर्द चरमपंथी हमले में कई सैनिक मारे गए हैं। इस हमले के बाद तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दाऊदोग्लू ने आपात बैठक बुलाई है। ब्राजील के पेरेटी शहर के पास एक बस दुर्घटना में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। मैक्सिको में करीब एक साल पहले 43 छात्रों के गायब हो जाने की घटना की स्वतंत्र जांच ने इस घटना के सरकारी ब्यौरे को खारिज कर दिया है। इसराइली पुलिस का कहना है कि जेरूसलम में समलैंगिकों के एक जुलूस में लोगों को चाकू मारने की वारदात को ना रोक पाने के लिए 11 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। ग्वाटेमाला में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद राष्ट्रपति ओटो पेरेज मोलिना ने इस्तीफा दे दिया था। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना। इसी के साथ नमस्कार भारत में आज बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।